الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ اسلام اور سائنس، اینڈ ٹوڈے آور ٹاپک از ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے ہماری آج کی گفتگو، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئی کینٹ ایون امیجن the suicide and homicide, rather depression rate is increasing and deaths due to overdose, such sort of news are imminent. آج یہ ہمارے سامنے ہے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آٹھویں کلاس کا بچہ تھا، والدین سے موبائل فون مانگا، موبائل فون اس کو نہیں دیا گیا، اس نے خودکشی کر لی۔ ایسی اپلیکیشن آ چکی ہیں، ایسی گیمز بھی آئی ہیں جو کہ اپنے استعمال کرنے والوں کو اکساتی ہیں کہ وہ خودکشی کریں یا دوسروں کو مار دیں، اور ایسے واقعات اس وقت دنیا میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن، انگزائٹی، اعصابی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، نئی سے نئی بیماری آج سائیکیٹرک لٹریچر کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور پھر یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں دوائی زیادہ پی لی تو مر گیا، یا فلاں نشہ زیادہ کر لیا تو مر گیا، ڈیتھ ڈیو ٹو اوور ڈوز، ایسی خبریں بھی آنے والی ہیں۔ It's going to reach epidemic proportions, rather pandemic. Statistics are already alarming, yet no one is sounding any alarming bells. جس طرح کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، پولیو پھیل گیا، ہیزہ پھیل گیا، اس کے اوپر ہم بہت زیادہ بجٹ مختص کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز کا کوٹا فکس کر دیتے ہیں کہ اس خاص ایریا کے اندر یہ خاص بیماری بڑھ رہی ہے، اس کو ایپیڈیمک کہتے ہیں، اور پینڈیمک کہتے ہیں جو بیماری بہت بڑے سکیل کے اوپر پھیل جائے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بیماری جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ بڑھتی جا رہی ہے، الارمنگ پروپورشن کے اوپر آ چکی ہے، لیکن الارمنگ بیلز نہیں بج رہی، سائرن نہیں بج رہے۔ اور یہ کیا ہے؟ دس از سوشل میڈیا۔ پیرنٹس ہیو ٹو انٹروین، we have to stop giving our kids free access to social media and phone at young ages. They are not ready, their brain is not wired to adjust that amount of dopamine. ye bacche hain, inka dimag abhi itna capable nahi hai ki wo social media par aane wali itni zyada information ko process kar sake, itna zyada kuch apni zindagi mein wo adjust kar sake. they are children, you have to intervene. hame اس میں آگے بڑھ کر انٹروین کرنا پڑے گا۔ ان سے موبائل فون ہم لے سکتے ہیں، وہ بچے ہیں، اور ہمیں یہ چیکس کرنے پڑیں گے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہی نسل جب آفیسز میں آ رہی ہے، یہی نسل جب پروفیشنل ہو رہی ہے، یہ نسل جب دفاتر میں آ رہی ہے، تو کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ کین یو سی، جسٹ واچ، جسٹ واچ، گو ٹو اینی آفس، کسی بھی دفتر میں آپ جائیں، یو ول سی دا اولڈر امپلائیز ود دیئر فون آن دیئر سائڈز اینڈ دیئر ورکنگ۔ کوئی بوڑھا آدمی ہوگا تو اس کے سائڈ پہ فون پڑا ہوگا اور وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوگا، ہی ول بی ڈوئنگ لائک دس، ورک آن دا لیپ ٹاپ، موبائل فون ادھر پڑا ہے یا ادھر پڑا ہے یا جیب میں ہے۔ لیکن آپ نوجوانوں کو دیکھیں گے جو ینگر امپلائی ہیں، وہ کس طرح کام کر رہے ہوں گے؟ اس طرح، ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ چل رہا ہے، دفتری کام ہو رہا ہے، لیکن اپنے موبائل کو چیک کر رہے ہیں، دے آر ملٹی ٹاسکنگ، وہ ایک وقت میں زیادہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ دے آر ناٹ اٹینڈنگ ٹو دا ورک وتھ پراپر کنسنٹریشن وچ دے آر سپوز ٹو ڈو، اور وہ اپنے اوریجنل کام کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے جو ان کو کرنا چاہیے۔ دیر از اے سب کانشیس ریئیکشن ٹو دیز ڈیوائسز وین یوز دیم۔ یہ غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ریئیکشن ہوگا آپ کا، نفسیاتی طور پہ ایک ریئیکشن ہے جو اس ڈیوائسز کا ہوتا ہے۔ آپ ایک کلاس کی صورت میں بیٹھے ہیں، آپ ایک گروپ کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور میں آپ کے سامنے آپ کی کلاس کے اندر داخل ہوا ہوں، اور میرے ہاتھ میں یوں موبائل فون ہے، اور میں یوں پکڑ کر آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ابھی بھی میں جو سلسلہ کر رہا ہوں آپ سے، میں نے موبائل فون پکڑا ہوا ہے، میں کبھی ساتھ میں کر رہا ہوں، کبھی ساتھ میں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایمان سے بتائیے، ڈو یو تھنک، ڈو یو فیل فور می یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دس کلاس؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے آپ اس کلاس میں سب سے اہم آدمی ہے؟ نو یو ڈونٹ۔ نہیں، یہ موبائل فون باہر آ گیا ہے، आपका ज़हन आपको मुसलसल पिन कर रहा है कि इस बंदे के लिए मोबाइल फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर जब ये मशीन बाहर आ जाती है उस वक्त ये ऐलान हो जाता है, नफसियाती तौर पर यह असर होता है कि ये जरूरी तुम नहीं हो बल्कि जरूरी ये मशीन है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, रस्ते में किसी ने मुझे रोका और कहा भाई एक मिनट ठहरना मेरी बात सुनो, और मैं कहता हूं हाँ बताओ क्या बात है। अब इस मोबाइल फोन की हाथ में मौजूदगी उस बंदे को ये बता रही है कि तुम्हारी बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, योर टॉक इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज माई मोबाइल फोन इज आउट। और जब हम किसी जगह पर लंच पे बैठते हैं, मीटिंग पे बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, और हम ऐसे करके जेब से निकाल के ये मोबाइल फोन सामने रख देते हैं, सारे बैठे हुए हैं, हमने ऐलान कर दिया कि पूरे कमरे के अंदर मेरे नजदीक कोई भी जरूरी नहीं है, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा जरूरी है। और वन मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एक बड़ी दिलचस्प बात जो होती है, सामने बैठा है, खाना खा रहे हैं, हमने मोबाइल साइड पे रखा और फिर बातें करते करते अचानक यहां पर बेल बजी, हम आगे झुके, देखा किसका फोन है और कहा नहीं मैं ये फोन अटेंड नहीं करता, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे नाश्ते का वक्त दे दिया और फोन अटेंड नहीं किया। भाई इसको सामने नहीं रखना चाहिए था, इसको जेब में रखते ही जाके शेल्फ पे रखकर आते। दिस इज अ डिवाइस रिएक्शन। एंड मीटिंग्स, उफ, मीटिंग्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा ऑफुल रिएक्शन आता है। मीटिंग में आप आके बैठे, बॉस अभी नहीं आए, बॉस नहीं आए मीटिंग शुरू नहीं करनी, बैठ जाओ मोबाइल फोन पे लगे हुए, बॉस आ गए शुरू करो मीटिंग। नाउ व्हाट इज दिस, क्या आप जानते हैं नए ताल्लुकात कब बनते हैं? डू यू नो वेन दीज न्यू रिलेशन आर बिल्ट? नए ताल्लुकात, नई PR कब बनती है? ये जो इन बिटवीन टाइम होते हैं। अपनी स्क्रीन से नजर तो उठाओ, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कितना कुछ मिस कर रहे हैं आप। दिस होल वर्ल्ड इज ए बिग क्लासरूम, हर क्लासरूम की चार दीवारें और एक छत नहीं होती। ईच एंड एवरी पर्सन इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, ईच एंड एवरी क्लाउड इन द स्काई इज गोइंग टू टीच यू समथिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज हियर टू डिस्कस विद यू। इस स्क्रीन से नजरें उठाओ, तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। दिस इज ए साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ दीज डिवाइसेस। तो 1994 में इजाद होने वाला ये मोबाइल फोन, इसने इंसान की जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। अब साल के हिसाब से जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जनरेशंस के नाम रखे हुए हैं। 1946 से 1964 तक जो अफराद हैं जिनकी पैदाइश हुई उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। 1965 से 1979 तक जो अफराद पैदा हुए उनको जनरेशन एक्स कहा जाता है, और 1980 से 1994 तक जो पैदा हुए उनको जनरेशन वाई कहा जाता है, और 1995 से अब तक जो पैदा हो रहे हैं उनको जनरेशन जेड या जनरेशन जी कहा जाता है। अब ये जनरेशन जी सबसे नई है, इसको जितने भी नौजवान और बच्चे हम देखते हैं दे आर ऑल फ्रॉम जनरेशन जी, एंड दे आर द सोशल मीडिया जनरेशन। दे हैव नेवर नोन ए टाइम विदाउट सोशल मीडिया, दे आर टेक सेवी, दे आर टेक इननेट। ये वो लोग हैं जो जब पैदा हुए इन्होंने सोशल मीडिया को देखा, और ये ऐसे दौर का तस्वर नहीं कर सकते, इनको नहीं अंदाजा वो दौर कैसा था जब सोशल मीडिया नहीं था। दे आर अल्ट्रा रिलायंट, ये सोशल मीडिया को देखते हैं, इनके पास बहुत बहुत मालूमात है, इनकी पसंद नापसंद बिल्कुल अलग है। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब कोई बिजनेस डिसीजन लेती हैं तो इसी जनरेशन को मद्देनजर रख के लेती हैं कि इनकी पसंद या नापसंद क्या है। तो क्वेश्चन इज, सवाल ये है, इज सोशल मीडिया मेकिंग अस सोशल ओरिजिनली? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या सोशल मीडिया हमें वाकई सोशल बना रहा है? सोशल से मुराद क्या होता है? मुआशरे में बहुत से रिश्ते होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, इन सब से कैसे बर्ताव करना है, कैसे मेलजोल होगा, क्या ये हमें सोशल मीडिया सिखा रहा है? लफ्ज सोशल मीडिया किसने ईजाद किया, हमें तारीख से इसका कोई ट्रेस नहीं मिलता, हिस्ट्री इज नॉट एविडेंट। हमने कुछ रिसर्च किया इस पर लेकिन हमें पता नहीं चल सका फ्रॉम वेयर दिस वर्ड केम फ्रॉम। लेकिन इतना पता है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिए, स्मार्टफोन में और मोबाइल फोन में फर्क होता है। मोबाइल फोन उस डिवाइस को कहते हैं जिससे आप कॉल सुन सकते हैं या कॉल आपको आ सकती है, और कुछ इंटरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन वो होता है जो कि मिनी कंप्यूटर होता है, जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं और उसको आप रन करते हैं। तो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन, दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि 2019 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5 अरब से ज्यादा हो सकती है, और सोशल मीडिया का जितना भी इस्तेमाल दुनिया में हो रहा है उसका 80% स्मार्टफोन के ऊपर है। सोशल मीडिया मीन्स वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस दैट एनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट और टू पार्टिसिपेट इन सोशल नेटवर्किंग। सोशल मीडिया से मुराद ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है जो अपने इस्तेमाल करने वालों को अशिया, चीजें, तस्वीर, वीडियो बनाने और शेयर करने की सहूलत देती है। और आज ये सब कितना जरूरी हो चुका है, किसी ने चुटकुला सुनाया कि घर के अंदर सब बिखरे हुए हैं, कोई पता नहीं है अम्मी किधर हैं, अब्बू किधर हैं, घर के दीगर अफराद, भाई और दीगर कहां है, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन सबको इकट्ठा करना क्या किया जाए, क्या तरीका कार होगा। किसी ने कहा सबसे अच्छा तरीका यह है कि जाके वाईफाई का स्विच बंद कर दो, जब इंटरनेट बंद होगा सारे के सारे खुद ब खुद वाईफाई के पास आ जाएंगे कि भाई क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए, लोड खत्म हो गया, बत्ती चली गई, और सबके सब आपको इकट्ठे मिल जाएंगे, क्योंकि एक उनसे गुमान रखा जा रहा है कि सारे कहीं ना कहीं अकेले बैठ के इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया के असरात को अगर देखा जाए तो यहां कलेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव में हमारे सामने एक अहम बात आती है जो कि बड़ी डराने वाली है, और वो क्या कि कुछ अहम रिश्तों को, रिलेशंस को, उनके इमेज को जानबूझकर डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। उन रिश्तों के बारे में गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं, मजाक बनाया जा रहा है लतीफों के जरिए, जोक्स के जरिए, जोमानी जुमलों के जरिए, हिडन मैसेजेस रखे जा रहे हैं, एंड दीज हिडन मैसेजेस आर ऑन इंप्रेशनेबल माइंड, यानी इससे वो लोग मुतासर हो रहे हैं जो उस तजर्बे से गुजरे ही नहीं है। मिसाल के तौर पर इन इस्लाम मैट्रिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इस्लाम में शादी निकाह ये एक बहुत अहम एक्ट है, और निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, सब कुछ हकूक के लिहाज से, रसूमात के लिहाज से बयान कर दिया गया, मुकम्मल गाइडलाइन मौजूद है। अब पिक्चर क्या पेंट की जा रही है, जोमानी अंदाज से यह पैगाम दिया जा रहा है। मसलन सास एक अहम रिश्ता है, और तासुर यह दिया जा रहा है कि इसके साथ कभी नहीं बनेगी, बाय डिफॉल्ट सास का रवैया सही नहीं होगा, लड़ाई होनी होनी है, हर वक्त डांट डपट वाला मामला होगा। अब एक गैर शादीशुदा खातून सोशल मीडिया पर देख देख कर, सुन सुन कर, उसका क्या जहन बनेगा, वो क्या सोचेगी, और जब प्रैक्टिकली उसका इंटरेक्शन होगा उस वक्त उसका रवैया क्या होगा। हत्ता के वालिदैन की तहकीर की जाती है, वालिदैन को दोस्तों के कंपैरिजन पर लाया जाता है, और फिर पिक्चर ये पेंट की जाती है कि वालिदैन तो बहुत सख्त हैं, आजादी नहीं देते, खूब घूमने फिरने नहीं देते, तुम्हारा दोस्त बड़ा रहमदिल है, अपने दोस्त की मानो और वालिदैन की ना मानो। दिस इज व्हाट सोशल मीडिया इज पेंटिंग। और सोशल मीडिया का क्या असर हुआ, सोशल लाइफ का हमारी क्या हाल हो गया। सन 2000 के अंदर एक सर्वे किया गया और लोगों से यह पूछा गया, क्या आप इस बात को सही समझते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पर मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जाए। 90% अफराद ने कहा कि वो इस बात को सही नहीं समझते कि खाना खाते वक्त, बात करते वक्त, फैमिली के साथ, ऑफिस में हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। लेकिन आज 19 साल गुजरने के बाद इसका इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि डिक्शनरी के अंदर एक नया लफ्ज ऐड हुआ और वो है फबिंग, PHUBBING। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फबिंग, कि कोई आपके सामने बैठा है, आपसे बातें कर रहा है और आप अपने मोबाइल को देख रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहा है लेकिन आप मोबाइल के ऊपर हैं। और हैरतनाक बात सुनिए, सन 2001 में किसी मुल्क के अंदर औसतन करीबी दोस्तों की तादाद 10 होती थी, 2001 में किसी बंदे का जो फ्रेंड सर्कल था 10 दोस्त होते थे उसके, लेकिन आज 2019 में जब ये रिसर्च को रिपीट किया गया सिर्फ 2 दोस्त रह गए, बाकी 8 कहां गए, सोशल मीडिया खा गया। याद रखिए, अस्पताल के बेड के पास और आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी जिंदगी की उम्मीद कम रह जाती है, ऑक्सीजन लगी होती है, 24 घंटे सर्वेलेंस चाहिए होती है, कोमे में होता है मरीज, उस वक्त उस बेड के बाहर यही मां बाप, बहन भाई, जौजा, बच्चे वही खड़े होंगे। ये फेसबुक के, सोशल मीडिया के दोस्त नहीं होंगे, उनकी तीमारदारियां सिर्फ कमेंट्स तक और लाइक्स तक रह जाएंगी। और जिन मां बाप को आज तुम भूलते चले जा रहे हो, जिन रिश्तेदारों से दूर हो रहे हो, यही आकर उस वक्त मदद करेंगे। अब चार चार पांच पांच घंटे दिन के जिस काम में गुजरे, एनीथिंग वी डू दैट ऑफन नीड्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग वी स्पेंड दैट टाइम डूइंग हैज एन एवर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन माइंड। एक इतना काम जो दिन में चार चार पांच पांच घंटे दफा किया जाए, और उस वक्त किया जाए जब माइंड एक्टिव होता है, ये नहीं कि जब सुस्त पड़े हो, नहीं, जब एक्टिव माइंड के साथ आप एक काम को दिन के पांच घंटे दे रहे हैं, तो क्या उस काम की सुपरविजन नहीं होनी चाहिए? क्या उस काम पे प्रॉपर चेक नहीं होना चाहिए? और असरात क्या हो रहे हैं? सामने नजर आ रहे हैं, फाइट चल रही है, मोनोलॉग, मुकालमा जारी अपने आप से, मैं कैसा लग रहा हूं, ये सब फलना इकट्ठे हुए, इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट चढ़ाई, मुझे क्यों नहीं बुलाया, आज मैं कैसा लग रहा हूं, मेरी तस्वीर FB पर नहीं आई, आज मेरी तस्वीर फेसबुक पर नहीं आई, फलां पोस्ट पर मुझे लाइक नहीं मिले, फलां ने लाइक क्यों नहीं किया, जरूर मुझसे जलता होगा, उसको मुझसे हसद हो गया, उसने मेरी तस्वीर पर कमेंट्स क्यों नहीं किए। और सोशल मीडिया यूजर्स जो बहुत ज्यादा फोन पर रहते हैं, उनमें एक अजीब किस्म की नफसियाती सिचुएशन बन रही, इसको बीमारी तो नहीं कहा जाएगा, एक सिचुएशन, एक हालत बन रही है जिसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। मदनी चैनल के नाजरीन, अंग्रेजी जबान के अंदर एक तरीकाकार है कि दो लफ्जों को मिला के एक लफ्ज बनाया जाता है, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। जिस तरह ब्रेकफास्ट नाश्ते को कहते हैं और लंच दोपहर को खाने को कहते हैं, अब ब्रेकफास्ट को और लंच को मिला दिया गया तो बना ब्रंच, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में जो खाना आप खाएंगे उसको ब्रंच कहा जाता है, वो नाश्ता भी नहीं है, दोपहर का खाना भी नहीं है, उसको ब्रंच कह दिया। इसी तरह एक वर्ड है स्मॉग, जो बहुत ज्यादा आती है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना, स्मोक और फॉग, स्मोक कहते हैं धुएं को, फॉग कहते हैं धुंध को, उन दोनों को मिला दिया, स्मोक से SM ले लिया और उसका OG ले लिया स्मॉग, वो धुंध जो कि खालिस्तन धुंध नहीं है बल्कि धुएं की वजह से पैदा हुई। इसी तरह एक वर्ड है इन्फोमर्शल, इन्फॉर्मेशन एक लफज है और एक कमर्शियल लफज है, इन्फॉर्मेशन और कमर्शियल को मिला दिया वर्ड बना इन्फोमर्शल, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोर्टमेंटो, दिस टेक्निक इज नोन एज पोर्टमेंटो, दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज टेक्निक इन एनी लैंग्वेज स्पेशली इन इंग्लिश। तो ये लफज है रिंगजाइटी, रिंग और एंगजाइटी, रिंग कहते हैं फोन की घंटी को, एंगजाइटी कहते हैं परेशानी को, इन दोनों को मिला दिया बना रिंगजाइटी, मोबाइल फोन बोल नहीं रहा लेकिन सुन सुनकर उसके दिमाग में मोबाइल इतना घुस गया है कि उसको हर वक्त लगता है मेरा मोबाइल फोन बोल रहा है, वो बार बार मोबाइल को पकड़ता है देखने के लिए, बोल तो नहीं रहा, बोल तो नहीं रहा, वट इज दिस, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इट, घंटी तो नहीं बोली, नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कमेंट आ गया, कोई मैसेज आ गया होगा व्हाट्सएप पे, कुछ इंस्टाग्राम, ना एवरी टाइम इज कैप्टिवेटेड, ही इज ट्रैप्ड। और फिर ये एक साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट समझी जाने लगी है। और फिर ये देखिए, लाइक्स और कॉमेंट्स और तारीफी कलमात सुनने के लिए झूठ और मुबालगा आराई का सहारा लिया जाता, मुझे मेरे काम पर, मेरी पोस्ट पर ज्यादा लाइक मिले, झूठ हो या सच हो, बस लाइक ज्यादा होने चाहिए। और जैसे ही कोई सीनरी देखी, खाना खाने बैठे, सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी कि फौरन उस खाने की फोटो उतार के थक करके सोशल मीडिया पर डालें कि मैं यहां पर मौजूद हूं। और फिर ये उस वक्त ज्यादा होगा जब उम्र 18 से 22 साल के दरमियान होगी। एंड देन इट गिव्स यू अ फॉल्स मीनिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। देखिए, जीत का एक मियार होता है, कामयाबी कुछ कर लेने के बाद होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसे गलत अंदाज से पेश किया जाता है और यूजर को डिसीव किया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की गई, उस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए, मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स किए, लाइक किए, शेयर किए, और जब पोस्ट करने वाले ने इनामात देखे तो उसने गुमान किया कि उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि रिवॉर्ड और इनाम कब मिलता है? जब वाकई कोई बड़ा काम किया हो। बड़ा काम तो उसने नहीं किया, बिस्तर पर लेटा हुआ था, काउच के ऊपर ऐसे कमर लंबी करके बैठा हुआ था, मोबाइल फोन पकड़ा, थक करके एक तस्वीर आगे कर दी, अब उस तस्वीर पे कमेंट आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, वो समझ रहा है उसको इनाम मिल रहा है, उसके अंदर वाली वो चीज सेटिस्फाई हो रही है। नो, यू हैव डन नथिंग, यू मस्ट हैव डन समथिंग इफ यू नीड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मस्ट बी कोरिलेटेड विद प्रॉपर डूइंग। इनाम तो तभी मिलना चाहिए था ना जब आपने कोई बड़ा काम किया होता। कुछ किया तो नहीं आपने, इनाम तो नहीं मिल रहा आपको, लेकिन आपका जहन आपको ये बात बता रहा है कि तुम्हें इनाम मिल रहा है। और दिस फॉल्स, ये झूठी बात इंसान के जहन को खराब करती रहती है। तो फिर मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ये सोशल मीडिया की कुछ तबाहकारियां, कुछ चीजें ऐसी जो मैंने आपको बताई. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन ऑन चिल्ड्रन, यानी बच्चों के साथ जो मोबाइल फोन का एक इम्पैक्ट हो रहा है जो हम देख रहे हैं, वो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ. याद रखिए, बच्चों के अंदर कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, नेचुरल माइलस्टोन्स, जो बच्चों ने जब वो बड़े होते जाएंगे, अगर वो सेहतमंद पैदा हुए तो वो चीजें उनके साथ जरूर होंगी. मिसाल के तौर पे 6 माह में बगैर सहारे के बैठेगा, 8 माह में सहारे के साथ बैठेगा, और 6 से 8 माह में चीजें मुंह पे डालेगा, 9 माह से 1.5 साल में वो चलना शुरू कर देगा, 2 से 3 माह में गर्दन को संभालेगा, 1 साल में 1 मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा बाबा मामा, और 2 साल में 2 मीनिंगफुल वर्ड बोलेगा बाबा आओ मामा जाओ, इस तरह से वो बोलेगा. अब ये एक तरबियत है, और इस तरबियत के अंदर ये नेचुरल माइलस्टोन्स है जो मैंने आपको बताया, ये अगर बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है तो डॉक्टर साहिबान और जो हमारी बड़ी बूढ़ियां होती है घर के अंदर, जो बड़े होते हैं सीनियर्स होते हैं, उनको पता है कि बच्चा इस उम्र में जाके ये काम करेगा, और अगर वो काम नहीं करता बच्चा तो वो उसकी ट्रेनिंग करते हैं. अगर वो बैठना नहीं शुरू हुआ तो फिर डॉक्टर से भी मशवरा किया जाता है कि हमारा बच्चा चल नहीं रहा जबकि उसकी उम्र हो चुकी है चलने की. और ये नेचुरल माइलस्टोन्स है, फितरती अमल है, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती. लेकिन एक चीज वो है जिसे तरबियत कहा जाता है, जो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रही है. व्हाट वी हैव सीन दैट वी आर ग्लूड टू मोबाइल फोन, ऐसे लगता है इंसान मोबाइल फोन से जुड़ गया है. बच्चा बाहर गया हुआ था, बच्चा बाहर से अंदर आता है और आकर देखता है कि उसकी माँ भी मोबाइल फोन पर है, उसका बाप भी मोबाइल फोन पर है. वो अपने माँ बाप को टोकता है, तवज्जो मांगता है, तो माँ बाप उसको डांट देते हैं और अपने मोबाइल फोन पे मसरूफ रहते हैं. बल्कि आजकल तो माँ बाप उसको भी मोबाइल पकड़ा देते हैं. इतना जिंदगियों में ये दखल कर रहा है कि आज बच्चा पेंसिल पकड़ना नहीं सीखता, चलना नहीं सीखता, लेकिन उसके पास मोबाइल फोन होता है, उसको ऑपरेट कर लेता है. क्यों? मोबाइल फोन की एप्लीकेशंस को ऐसा बनाया जाता है कि छोटा सा बच्चा भी उसको टैप करके बड़ी अंदर तक चला जाएगा और जाके उसके अंदर खेलना शुरू कर देगा. अब एक तहकीक के मुताबिक इंसान के दिमाग की जो ग्रोथ है वो 21 साल तक होती है, और पैदाइश से लेकर 2 साल तक इंसान का दिमाग, बच्चे का दिमाग 3 गुना बढ़ जाता है. टू मच चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री इफ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन मोबाइल. इतना ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल दिमाग की नशोनुमा को चेंज करता है, मसाइल पैदा उसमें कर देता है, और एक मुकम्मल सेट बीमारियों का दरियाफ्त हुआ जिसका नाम है ESS, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम. दिमाग का वो हिस्सा जहां फैसले होते हैं, ये अगला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं फ्रंटल लोब, इसे ब्रेन प्रोसेसिंग जोन भी कहा जाता है. यहां पर क्रिएटिविटी भी होती है, इंसान ने जो नई चीज सोचनी होती है, जो डेवलपमेंट की बात उसने करनी होती है, तखलीकी सलाहियतें होती हैं, ये ग्रोथ उस बच्चे की बड़ी जबरदस्त मुतासर हो जाती है जो ज्यादा वक्त मोबाइल पर गुजारता है. अब देखिए, एक बॉल है, मिसाल लीजिए ये बॉल है. अब ये बॉल मेरे सामने ऐसे घूम रहा है, ये बॉल जो घूम रहा है तो ये 3D एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं ओरिजिनल लाइफ के अंदर ये बॉल घूम रहा है, और ये 3D एक्सपीरियंस है. लेकिन जब यही बॉल स्क्रीन के अंदर घूमेगा, मोबाइल पे घूमेगा, लैपटॉप पे घूमेगा और बच्चा उसको देखेगा, तो वो 2D एक्सपीरियंस होगा, 3D नहीं होगा, हकीकत नहीं होगी, रियलिटी नहीं होगी. और यही हकीकत से फरार का नतीजा है कि डॉक्टर रोवन, जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ साइकेट्री के हेड है, अपनी किताब में लिखते हैं कि 1 in 3 चिल्ड्रन नाउ एंटरिंग इन आवर स्कूल्स डेवलपमेंटली डिलेड, नेगेटिवली इंपैक्टिंग लिटरेरी एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स. हमारे स्कूलों में आने वाले हर 3 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसकी दिमागी नशोनुमा पूरी नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से उसकी तालीमी सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं. और याद रखिए, ये हकीकत से फरार है. फेस टू फेस बच्चा जो सीखता है ना, फेस टू फेस कंपटीशन में अपने उस्ताद से, अपनी मां से, अपने बाप से, जो चेहरे के तासुरात बनते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, आवाज को कभी ऊंचा किया जाता है, कभी नीचा किया जाता है, चेहरे के तासुरात होते हैं, हाथों को हिलाना, सर को हिलाना, वॉइस इन्फ्लेशन, ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है. यू कैनॉट लर्न दीज थिंग्स प्रैक्टिकली फ्रॉम एनी सोशल मीडिया. इसके लिए आपको ये जिंदा इंसानों वाली दुनिया चाहिए जहां पर ये चीजें आप सीखें. तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को समझें. और ये कहा जाता है कि इफ यू वॉन्ट ए सोसाइटी फ्री फ्रॉम टेररिज्म एंड फुल ऑफ ब्यूटिफुल माइंड, ٹرائی ٹو ٹرین دیز تھری ایکٹرز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ آپ کو ملے جہاں پر پرسکون ہو, رواداری ہو اور حسن اخلاق کے مدنی پھول اگتے ہوں, تو پھر آپ کو تین طرح کے افراد کو ان کی ذمہ داری سکھانی پڑے گی. اور وہ کون ہیں؟ ماں, باپ اور استاد. ویسے تو یہ تینوں افراد یقیناً اپنے طور پہ اپنی ذمہ داریاں نبھا ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے بچے پالنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صدیوں سے جانور اور پرندے اپنے بچے پال رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ تربیت, توجہ, لے کے بیٹھنا, سکھانا, بری بات سے روکنا, اچھی بات کی طرف راغب کرنا. دس از دا مین پوائنٹ. اور یہ بات بھی دیکھیے کہ کتنے ضروری ہیں یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے. ہر بندے, ہر مسلمان کے لیے باعمل ہونا بہت ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک استاد کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کین یو امیجن, کچے سیمنٹ کی طرح دماغ ہوتا ہے بچے کا, اور استاد کی ایک ایک حرکت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک ایک ادا کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بچے استاد سے بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں, چھیڑے وغیرہ بھی ڈالتے ہیں, غلط بات ہے, نہیں ڈالنی چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ استاد اس کی زندگی میں بہت گہرا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. استاد کی ایک ایک بات کو بچہ سنتا ہے. استاد درود و سلام سکھا دے, استاد ان کو نماز سکھا دے, استاد ان کو نیکی کی راہ پہ لے آئے, یا اس کے علاوہ کوئی اور کام کر دے. یو مسٹ سیٹ این ایگزامپل. اور اب تو بہت سے ملکوں کے اندر یہ بات ہو گئی ہے کہ کلاسز کے اندر استاد بھی موبائل فون یوز نہیں کریں گے, جتنا ہو سکے گا اپنے بچے کے ساتھ, اپنے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. اور آنکھوں کے حوالے سے, یہ موبائل فون سے نا نیلی روشنی نکلتی ہے, اسے کہتے ہیں بلو لائٹ. اور ڈاکٹر میک کارتھی جو امریکن آپٹومیٹرسٹ ایسوسی ایشن سے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. بچوں کی آنکھیں نا پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ہیں, ابھی پوری طرح بنی نہیں ہوتی, اور زیادہ اسکرین کو دیکھنا ان کی آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ برا اثر ڈالتا ہے. سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے, ہماری آنے والی نسل ہے, میرے بچے کیا براؤزنگ کر رہے ہیں, کیا سرچنگ کر رہے ہیں, کیا اسکرولنگ, پنچنگ, سوائپنگ کر رہے ہیں, کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. دیکھیے تو صحیح, سمجھیے تو صحیح. اور آج کل تو ویسے ہی بہت زیادہ ٹرینڈنگ ویڈیوز کا آ گیا ہے. مختلف سرچ انجنز یہ کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی, آپ سے پوچھے بغیر نیچے بہت ساری ویڈیوز کھول دیں گے کہ بھئی اس سے ملتی جلتی یہ بھی ویڈیوز ہیں, یا تم نے اگر یہ دیکھ لی تو یہ بھی دیکھ لو. اور کبھی کبھار وہ اچھا سٹف نہیں ہوتا, صحیح نہیں ہوتا. بچے بڑے کسی کے لیے دیکھنے کے لیے صحیح نہیں ہوتا. پہلے تو ہوتا تھا نا, وہ ٹی وی کمرے کے درمیان میں پڑا ہوا ہے, اتنا بڑا ٹی وی ہوتا تھا, وہ کوئی گزر رہا ہے وہ جو بھی لگایا اپنے پورا گھر دیکھتا تھا بھی کیا لگا ہوا ہے اس پہ. لیکن آج جو چھوٹی سی اسکرین نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو, کیا نہیں دیکھ رہے, کوئی پتہ نہیں, سننا کیا ہے کانوں کے اندر, وہ لگائے ہوئے ایئر بڈز, کوئی پتہ نہیں چلتا. تو یاد رکھیے یہ غلط رجحانات ہیں. معاشرے میں فرتفری نظر آ رہی ہے, آج ہمیں نظر آ رہا ہے ادب نہیں ہے, لوگ شکایتیں کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. یاد رکھیے کوئی کام وجہ کے بغیر نہیں ہوتا. اٹس جسٹ لائک این ایکو. ایکو, ایکو سنا آپ نے اس کو, ایکو کہا جاتا ہے. ایکو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بولتے ہیں وہی پلٹ کر آتا ہے. اور کہا گیا کہ دس سوسائٹی از این ایکو, یہ معاشرہ بھی ایکو کی طرح ہے, آپ جو کریں گے وہی پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, سمجھ لیں کہیں نہ کہیں سے محبت آپ کو بھی مل جائے گی. آپ سچ بولتے ہیں, وہ سچ آپ کے پاس آئے گا. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ دھوکہ آپ کے ساتھ ہو جائے. آپ کسی سے رواداری کا سلوک رکھتے ہیں, اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں, آپ تک بھی اچھی بات پہنچ سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو ٹیچ سم تھنگ گڈ. ہم نے جو آج ڈسکس کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے اور اس کے اوپر بات کی, مدنی چینل کے ناظرین اچھے کام کریں, وہ کام کریں جو کرنے والے ہیں. آبویسلی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اچھی اپرچونیٹیز ہیں, لیکن جب ہم سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور جب سر اٹھاتے ہیں گھنٹوں کے بعد, تو دیکھتے ہیں اتنا کام پینڈنگ پڑا ہوتا ہے, اتنے صفحے کرنے والے پڑے ہیں, گھر کا کام پڑا ہے, اب اسکول کالج یونیورسٹی کا کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے, کئی اور کام ایسے تھے جو ضروری تھے اور ہم نہیں کر سکے. کیوں؟ فضول کاموں میں پڑے رہے. تو اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھیے. آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک اس وقت دنیا بھر میں قرآن و سنت کا یہ زبردست پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہے. پریکٹیکلی معاشرے میں اتر کے ڈیولوشن کے ساتھ گراس روٹ لیول تک جا کے آج دعوت اسلامی مدنی انقلاب بپا کر رہی ہے. الحمدللہ ہر ہر شعبے میں وی ہیو ڈیپ روٹس. ہر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے. میڈیا پریزنس دعوت اسلامی کی کتنی ہے کہ آپ جب ٹی وی لگاتے ہیں مدنی چینل آپ کو نظر آتا ہے, آپ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں, ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر دعوت اسلامی کی پریزنس موجود ہے, کیونکہ اسکیپ نہیں ہے. ہم نے آپ کو اچھا موقع دے دیا, آپ دعوت اسلام کی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں, وہ ہزاروں جگہوں پہ جاتی ہے, آپ کو ثواب ہوتا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول میں آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت بہت زیادہ ثواب کمائیں گے, آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کا اندازہ ہوگا. دس الٹیمیٹ موٹیو وچ امیر اللہ سنت ہیز گیون اس, دس مدنی ایم دیٹ آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دا انٹائر ورلڈ, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, ایک مقصد آپ کو مل جائے گا اور اس مقصد کو جب آپ فالو کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی میننگ فل لگے گی, ایسے لگے گا واقعی زندگی کو ایک مقصد مل گیا, اپنی اصلاح کی کوشش, اپنے بھائی کی اصلاح کی کوشش, اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش, اپنے محلے کی, اپنے شہر کی, اپنے ملک کی اور اس پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش, کتنا بڑا مقصد ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.